एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब पर बात करने जा रहे हैं, प्रोफेसर पार्थ दास गुप्ता की एन इंक्वायरी इंटू वेल बींग एंड डेस्टिट्यूशन। ये सिर्फ गरीबी और अमीरी की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूछती है कि असल में अच्छा जीवन, एक खुशहाल जीवन, वो होता क्या है।
हाँ, और ये सवाल आज के समय में बहुत बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर तरक्की को, आप जानते हैं, जीडीपी के आंकड़ों में ही देखते हैं कि देश कितना कमा रहा है, पर क्या बढ़ती कमाई का मतलब हमेशा बेहतर जीवन होता है? ये किताब इसी सोच को चुनौती देती है और कहती है कि हमें इंसान की भलाई को देखना होगा, उसका स्वास्थ्य, शिक्षा, उसकी आज़ादी, यहाँ तक कि हमारे आसपास का पर्यावरण, इन सबको।
बिल्कुल, क्योंकि हम सब जानते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं होता। दुनिया में आज भी करोड़ों लोग भयानक गरीबी में जी रहे हैं, और ये किताब हमें उनकी मुश्किलों को शायद ज्यादा गहराई से और हमदर्दी से समझने में मदद करती है। तो चलिए इस सोच की परतों को खोलते हैं, देखते हैं दासगुप्ता हमें क्या सिखाते हैं।
हाँ, और इस गहरी सोच के पीछे हैं प्रोफेसर पार्थ दासगुप्ता। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के एमेरिटस प्रोफेसर हैं और दुनिया के जाने माने विकास अर्थशास्त्रियों में गिने जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ, मतलब, अर्थशास्त्र के दायरे में ही नहीं बंधे रहे।
अच्छा, किस तरह से अलग हैं वो? मतलब क्या खास है उनके काम में?
उन्होंने अर्थशास्त्र के साथ साथ दर्शन शास्त्र और पर्यावरण विज्ञान, इन सबको अपने काम में शामिल किया है। मतलब वो सिर्फ आंकड़ों और पैसों की बात नहीं करते, बल्कि इंसानी मूल्यों की, न्याय की, प्रकृति के महत्व की भी बात करते हैं। और उन्होंने जमीनी हकीकत को भी बहुत करीब से देखा है, खासकर दक्षिण एशिया और अफ्रीका में। तो उनकी बातें सिर्फ किताबी नहीं है, वो अनुभव पर आधारित है।
यानी सिद्धांत और जमीनी सच्चाई दोनों का संगम। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो फिर ये किताब असल में कहती क्या है, इसका सार क्या है?
देखिए, किताब का मूल तर्क ये है कि हमें मानव कल्याण को सिर्फ चीजों से या आय से नहीं मापना चाहिए। असली कल्याण तो जीवन की गुणवत्ता में है। अच्छा स्वास्थ्य, पेट भर भोजन, सीखने का मौका, अपनी बात कहने की आजादी और एक साफ सुथरा माहौल। दासगुप्ता कहते हैं कि जीडीपी जैसे पारंपरिक मापक वो सिर्फ समृद्धि यानी ऑप्यूलेंस दिखाते हैं, असली कल्याण या वेल बीइंग नहीं।
तो वो एक तरह से हमारी तरक्की की परिभाषा को ही बदल रहे हैं, उसको चुनौती दे रहे हैं।
हाँ, काफी हद तक वो हमें एक सफर पर ले जाते हैं, व्यक्ति के पोषण और स्वास्थ्य से शुरू करके फिर घर के अंदर लैंगिक बराबरी तक, फिर समुदाय में आपसी सहयोग और साझा संसाधन जैसे जंगल, पानी, और आखिर में सरकार और पर्यावरण की भूमिका तक। वो दिखाते हैं कि ये सब कड़ियां आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं।
और इसमें वो एक दुष्चक्र की बात करते हैं ना, एक गरीबी का जाल।
हाँ, ये बहुत अहम है। वो बताती हैं कि कैसे गरीबी, ज्यादा आबादी और पर्यावरण की बर्बादी, ये तीनों मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। गरीब लोग जीने के लिए शायद पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे उनकी गरीबी और बढ़ती है, और फिर शायद उन्हें लगता है कि ज्यादा बच्चे होना ही उनके बुढ़ापे का सहारा है। ये एक बहुत जटिल चक्र है। किताब इसी चक्र को समझने और तोड़ने पर जोर देती है।
चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है जीडीपी की आलोचना से। दासगुप्ता क्यों मानते हैं कि जीडीपी नाकाफी है?
देखिए, वो कहते हैं कि जीडीपी सिर्फ एक साल में पैदा हुई चीजों और सेवाओं का मूल्य बताता है ना? ये हमारी असली संपत्ति को नहीं गिनता, जैसे हमारे जंगल, हमारा पानी, साफ हवा या लोगों का स्वास्थ्य, उनका ज्ञान, इन सब को नहीं गिनता। आप सोचिए, अगर हम जंगल काटकर फर्नीचर बेच दें तो जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन हमने अपनी एक कीमती संपत्ति खो दी। दासगुप्ता इसी अनदेखी पर सवाल उठाते हैं।
अच्छा, तो फिर वो कल्याण को कैसे देखते हैं? आपने कहा था घटक और निर्धारक, ये क्या है, थोड़ा समझाएंगी?
हाँ, वो दो जरूरी चीजों में फर्क करती हैं। कल्याण के घटक वो हैं जो अपने आप में अच्छे हैं, जैसे स्वस्थ रहना, आजाद महसूस करना, समाज में इज्जत पाना, और कल्याण के निर्धारक वो साधन हैं जो इन घटकों को पाने में मदद करते हैं, जैसे खाना, पैसा, स्कूल, अस्पताल। पारंपरिक अर्थशास्त्र अक्सर निर्धारकों पर, मतलब आय पर अटक जाता है, जबकि दासगुप्ता कहते हैं कि हमें घटकों पर ध्यान देना चाहिए, असली कल्याण पर।
और यही पर वो कार्यक्षमताओं और क्षमताओं की बात करते हैं जो अमर्त्य सेन के काम से भी जुड़ी हैं। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है।
नहीं, इसे ऐसे समझे, कार्यक्षमताएं यानी फंक्शनिंग्स वो चीजें हैं जो आप असल में कर सकते हैं या हो सकते हैं, जैसे अच्छा भोजन करना, बीमार ना पड़ना, स्कूल जाना, वोट देना, ये सब। और क्षमताएं यानी कैपेबिलिटीज वो है आपकी वास्तविक आज़ादी या अवसर कि आप इन चीज़ों को चुन सकें और हासिल कर सकें। मतलब सिर्फ स्कूल होना काफ़ी नहीं है। क्या एक लड़की के पास सच में स्कूल जाने का अवसर और आज़ादी है? दासगुप्ता कहते हैं कि असली विकास लोगों की क्षमताओं को बढ़ाना है, उन्हें विकल्प देना है।
समझ गया, यानी सिर्फ साधन होना काफी नहीं बल्कि उन्हें इस्तेमाल करने की असली आज़ादी भी जरूरी है। और इसमें दोनों तरह की आज़ादी जरूरी है, मतलब सरकार के दखल से मुक्ति भी और कुछ करने या बनने की ताकत भी।
बिल्कुल, नकारात्मक स्वतंत्रता यानी नेगेटिव लिबर्टीज कोई आपको बोलने से रोके नहीं, बिना वजह गिरफ्तार न करे, और सकारात्मक स्वतंत्रता यानी पॉजिटिव लिबर्टीज आपके पास भूखे न रहने, इलाज करवाने, पढ़ने लिखने का वास्तविक अवसर हो, दोनों मिलकर ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। इसीलिए कल्याण को सिर्फ आय से मापना एकदम अधूरा है। हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीतिक अधिकार, पर्यावरण की स्थिति, इन सब पर ध्यान देना होगा।
अब आते हैं व्यक्ति और घर के स्तर पर। आपने पोषण के जाल का जिक्र किया था, ये क्या है और इतना अहम क्यों है?
हाँ, ये कह सकते हैं कि चौंकाने वाली बात है। दासगुप्ता दिखाते हैं कि पोषण और काम करने की क्षमता के बीच का रिश्ता सीधा नहीं है बल्कि ऐसा आकार का है। आप कल्पना कीजिए, शरीर एक मशीन की तरह है, उसे चलने के लिए कम से कम एक न्यूनतम मात्रा में ईंधन यानी पोषण चाहिए। अगर किसी को उससे भी कम मिलता है तो वो ठीक से काम ही नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितनी भी मेहनत करे।
मतलब एक बहुत ज्यादा गरीब इंसान शायद इतनी मेहनत करने लायक ताकत ही ना जुटा पाए कि वो गरीबी से बाहर निकल सके, ये कह रही हैं आप?
हाँ बिल्कुल, यही पोषण का जाल है। वो व्यक्ति इतना कम कमा पाता है कि अच्छा खा नहीं सकता, और अच्छा खा नहीं पाता इसलिए ज्यादा कमा नहीं सकता। ये एक दुष्चक्र बन जाता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, खासकर अगर उसके पास जमीन जैसा कोई सहारा ना हो। ये सिर्फ आलस का मामला नहीं है, ये शरीर की एक तरह की मजबूरी हो सकती है।
ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और घर के अंदर भी संसाधनों का बंटवारा बराबर नहीं होता, खासकर महिलाओं के साथ, ऐसा भी है?
दुर्भाग्य से हाँ। दासगुप्ता लैंगिक भेदभाव पर बहुत जोर देती हैं। कई समाजों में आज भी लड़कियों और महिलाओं को लड़कों और पुरुषों के मुकाबले कम खाना मिलता है, कम स्वास्थ्य सेवा मिलती है, कम शिक्षा मिलती है। और ये सिर्फ नाइंसाफी नहीं है, ये पूरे समाज के लिए नुकसानदायक है। जब आपकी आधी आबादी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही तो तरक्की कैसे होगी?
सही बात है। और फिर आता है समुदाय, बच्चे और पर्यावरण का मुद्दा। गरीब परिवारों में ज्यादा बच्चे क्यों होते हैं, इस पर दासगुप्ता क्या कहते हैं? क्या वो इसे सिर्फ अज्ञानता मानते हैं?
नहीं, वो इसे अज्ञानता या लापरवाही नहीं मानते, बल्कि इसके पीछे वो ठोस आर्थिक वजह बताती हैं।
गरीब ग्रामीण समाजों में बच्चे खेतों में हाथ बटाते हैं, पानी लाते हैं, लकड़ी लाते हैं। जहां बुढ़ापे के लिए कोई पेंशन या सामाजिक सुरक्षा नहीं है, वहां बच्चे ही एक तरह से सहारा होते हैं, है ना?
और अगर बच्चों के मरने का खतरा ज्यादा हो तो परिवार ज्यादा बच्चे पैदा करने को मजबूर महसूस कर सकता है, ताकि कुछ तो बच जाए।
लेकिन इसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है?
असर बहुत गहरा होता है। ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा ईंधन चाहिए तो जंगल कटते हैं, ज्यादा मवेशी जमीन को रौंदते हैं, चराई बढ़ती है, खेती कम उपजाऊ जमीन पर फैलने लगती है, जिससे मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी बह जाती है। यहीं पर वो गरीबी, जनसंख्या, पर्यावरण का वो जो खतरनाक गठजोड़ है वो सामने आता है।
इसे थोड़ा और समझाएंगी, ये चक्र कैसे काम करता है?
हाँ, सोचिए, गरीबी है, लोग जीने के लिए जंगल काटते हैं या जमीन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पर्यावरण खराब होता है, जैसे लकड़ी अब दूर से लानी पड़ती है, अब बच्चों की मेहनत की जरूरत और बढ़ जाती है लकड़ी लाने के लिए, परिवार सोचता है ज्यादा बच्चे होना जरूरी है, आबादी बढ़ती है, गरीबी और पर्यावरण पर दबाव और ज्यादा बढ़ जाता है। ये एक नीचे की ओर ले जाने वाला चक्र है, बहुत खतरनाक।
बाप रे, तो इसका हल क्या है? समुदाय इसमें कैसे मदद कर सकते हैं?
यहाँ साझा संसाधनों का यानी द कॉमन्स का, जैसे जंगल, तालाब, चारागाह, इनका सही प्रबंधन बहुत जरूरी है। दासगुप्ता कहती हैं कि जहाँ समुदायों में आपसी विश्वास होता है, सहयोग होता है, जिसे वो सामाजिक पूंजी कहती हैं, और नियम मजबूत होते हैं, वहाँ लोग इन साझा चीज़ों को मिलकर बचा सकते हैं और टिकाऊ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो स्थानीय संस्थाएं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं।
और फिर बड़े स्तर पर बाजार, सरकार, कानून, इनकी क्या भूमिका है?
दासगुप्ता बताती हैं कि गरीब देशों में बाजार हमेशा गरीबों की मदद नहीं कर पाते, जैसे उन्हें आसानी से बैंक से कर्ज नहीं मिलता, या फसल खराब होने या बीमारी के लिए बीमा नहीं मिलता। इससे क्या होता है कि वो किसी भी झटके के सामने, किसी भी मुसीबत के सामने बहुत असुरक्षित हो जाते हैं।
तो यहाँ सरकार का काम आता है, राज्य की भूमिका।
हाँ बिल्कुल, सरकार की भूमिका बहुत अहम है। उसे वो जरूरी चीजें देनी होती हैं जो बाजार शायद न दे पाए, जैसे साफ पानी, सड़कें, स्कूल, अस्पताल और सबसे जरूरी कानून का राज, और साथ ही लोगों के राजनीतिक और नागरिक अधिकार जैसे बोलने की आज़ादी, वोट का हक, इन्हें सुनिश्चित करना भी जरूरी है। दासगुप्ता का मानना है कि लोकतांत्रिक और जवाबदेह सरकारें वो गरीबों की जरूरतों को बेहतर समझती हैं और उनके कल्याण के लिए ज्यादा काम करती हैं।
इस सारी बातचीत से कुछ खास बातें, कुछ मुख्य संदेश उभर कर आ रहे हैं, क्या हम उन्हें एक बार संक्षेप में दोहरा सकते हैं?
नहीं है।
हमारी सेहत, हमारी शिक्षा, हमारे सामाजिक रिश्ते, हमारी आज़ादी, हमारा पर्यावरण, ये सब मिलके तय करते हैं कि हमारा जीवन कितना अच्छा है। भारत में ही देखें, हो सकता है किसी शहर में फैक्ट्रियां लगें और आय बढ़ जाए, पर हवा इतनी खराब हो जाए कि सांस लेना मुश्किल हो जाए, तो क्या ये असली तरक्की हुई? शायद नहीं।
दूसरी बात जो मुझे बहुत अहम लगी, आज़ादी कल्याण का दिल है, केंद्र है, और ये दोनों तरह की आज़ादी है, किसी के दबाव या रोक टोक से आज़ादी और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के मौके और काबिलियत होना। भारत जैसे लोकतंत्र में ये बात बहुत मायने रखती है कि क्या आम आदमी अपनी जिंदगी के बारे में सच में फैसले ले पा रहा है, उसके पास विकल्प हैं।
तीसरा, वो गरीबी, आबादी, पर्यावरण का तिहरा रिश्ता, यह हमें याद दिलाता है कि समस्याएं अलग थलग नहीं हैं, वो आपस में जुड़ी हुई हैं। हम जंगलों की कटाई को सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा मानकर गरीबी से अलग नहीं देख सकते। भारत के कई इलाकों में पानी की कमी, जमीन का खराब होना और गरीबी का गहरा नाता है, इन्हें एक साथ हल करना होगा।
चौथा, और ये शायद बहुत ही जरूरी है, लैंगिक असमानता तरक्की की राह में एक बड़ा रोड़ा है। जब तक महिलाओं को बराबरी के मौके नहीं मिलेंगे, पढ़ाई में, सेहत में, कमाई में, फैसले लेने में, तब तक पूरा समाज पीछे रहेगा। महिलाओं को सशक्त करना सिर्फ न्याय की बात नहीं है, ये गरीबी मिटाने का एक बहुत ताकतवर तरीका है। भारत के लिए ये कितना सच है।
और पांचवा, प्रकृति सिर्फ सुंदर नज़ारा नहीं है, गरीबों के लिए ये उनकी पूंजी है, उनकी संपत्ति है, खासकर गांव में रहने वालों के लिए जंगल, जमीन, पानी, यही उनकी रोजी रोटी का आधार है। इन्हें बचाना और सही ढंग से इस्तेमाल करना गरीबी हटाने के लिए उतना ही जरूरी है जितना सड़कें या स्कूल बनाना।
और आखिर में छठा बिंदु, संस्थाओं का महत्व, चाहे वो गांव के छोटे नियम हों या देश का बड़ा कानून, जब नियम कानून ठीक होते हैं, सरकार जवाबदेह होती है, तो लोगों का भरोसा बढ़ता है और विकास सही दिशा में जाता है।
हाँ, इस किताब में कई ऐसी बातें हैं जो सीधे दिल पर लगती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ विचारों को दोबारा याद करना जरूरी है जो दासगुप्ता की सोच का निचोड़ है एक तरह से।
हाँ, जैसे पहला विचार, किसी देश की तरक्की का असली पैमाना ये होना चाहिए कि वहाँ के लोगों को स्वस्थ, शिक्षित और आज़ाद जीवन जीने के कितने मौके मिल रहे हैं, न कि सिर्फ ये कि वहाँ कितना सामान बन रहा है। GDP जिंदगी की गुणवत्ता का मीटर नहीं है।
दूसरा, गांव के गरीब के लिए पर्यावरण कोई शौक की चीज नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी दौलत है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी, संपत्ति। जंगल, पानी, मिट्टी, ये उसकी अर्थव्यवस्थाएं हैं, इनका बिगड़ना मतलब उसकी गरीबी का बढ़ना।
तीसरा, घोर गरीबी यानी डेस्टिट्यूशन, वो सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, ये इंसान की तरह जीने की बुनियादी क्षमता का छिन जाना है, ये खाने, सेहत, इज्जत और अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी से महरूम होना है।
और चौथा, महिलाओं को ताकतवर बनाना, उनका सशक्तिकरण, सिर्फ उनके लिए अच्छा नहीं है, ये पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है। ये विकास की चाबी है, सिर्फ एक अच्छा काम नहीं।
ये सब बातें बहुत गहरी हैं वाकई, लेकिन सवाल उठता है कि आम जिंदगी में या नीतियां बनाने में इनका क्या मतलब है? हम इन्हें इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? क्या व्यवहारिक अनुप्रयोग हो सकते हैं?
देखिए, नीति बनाने वालों के लिए तो साफ संदेश है, सिर्फ जीडीपी के पीछे मत भागो। एक डैशबोर्ड बनाओ जिसमें सेहत, शिक्षा, पानी, जंगल, लैंगिक बराबरी जैसे कई संकेतक हों। स्वास्थ्य और पोषण में पैसा लगाना, खासकर औरतों और बच्चों के लिए, ये खर्चा नहीं है, ये देश के भविष्य में निवेश है। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को दुश्मन नहीं, दोस्त समझकर नीतियां बनाओ। जैसे भारत में नरेगा योजना कोशिश करती है कि रोजगार भी मिले और गांव में तालाब या पेड़ जैसे सामुदायिक संपत्ति का निर्माण भी हो, ये उस दिशा में एक कदम है।
और जो संस्थाएं विकास के काम में लगी हैं जैसे एनजीओस, उनके लिए क्या?
उन्हें भी टुकड़ों में नहीं सोचना चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए। अगर पेड़ लगा रहे हैं तो ये भी देखें कि इससे गांव की औरतों का बोझ कम होगा या बढ़ेगा, क्या उन्हें लकड़ी आसानी से मिलेगी। महिलाओं को मजबूत बनाना हर काम का, हर प्रोजेक्ट का एक केंद्रीय हिस्सा होना चाहिए। और सबसे जरूरी, गांव के लोगों की सुनो, उनके ज्ञान का सम्मान करो, टॉप डाउन नहीं, बॉटम अप।
व्यवसायों के लिए, कंपनियों के लिए भी कोई संदेश है?
हाँ बिल्कुल, CSR यानी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, वो सिर्फ कुछ पैसे दान देने तक सीमित न रहे। कंपनियां देखें कि उनके अपने कर्मचारी कितने स्वस्थ हैं, क्या उनके बच्चों को पढ़ने का मौका मिल रहा है, क्या वो पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, क्या उनकी सप्लाई चेन में महिलाओं को बराबरी का हक मिल रहा है। ये लंबे समय में उनके अपने व्यापार के लिए भी अच्छा है, सस्टेनेबिलिटी।
और हम जैसे आम लोग, हम क्या कर सकते हैं?
सबसे पहले तो मुझे लगता है गरीबी को समझने का अपना नज़रिया बदलें। ये सिर्फ किसी की व्यक्तिगत नाकामी या आलस नहीं है, ये एक बहुत जटिल जाल है जैसा हमने बात की। फिर एक जागरूक नागरिक के तौर पर हम ऐसी नीतियों की मांग कर सकते हैं जो सिर्फ पैसे बढ़ाने पर नहीं बल्कि सबकी भलाई, सबकी आज़ादी और पर्यावरण को बचाने पर जोर दें। और छोटी छोटी चीज़ें भी मायने रखती हैं, पानी बचाना, प्लास्टिक कम इस्तेमाल करना, स्थानीय चीज़ें खरीदना, अपने आसपास बराबरी का व्यवहार करना, ये सब जुड़ता है।
मेरे लिए तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि गरीबी एक सीधी सपाट सड़क नहीं बल्कि एक उलझा हुआ मकड़ जाल है। सेहत, पढ़ाई, पर्यावरण, मौके, बराबरी, आज़ादी, ये सब धागे एक दूसरे से इतने जुड़े हैं कि एक को छेड़ने से पूरा जाल हिल जाता है। इसलिए समाधान भी एक तरफा नहीं हो सकते, उन्हें भी हर पहलू को देखना होगा, समग्रता जरूरी है।
और मेरे लिए सबसे यादगार बात रही क्षमताओं और आज़ादी का विचार, कि तरक्की का असली मतलब है लोगों को काबिल बनाना, कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकें, उनके पास चुनने के लिए अच्छे विकल्प हों। ज्यादा चीजें जमा करना नहीं बल्कि ज्यादा काबिल बनना। केरल का उदाहरण जो किताब में भी है वो याद आता है, कैसे कम आमदनी के बावजूद सेहत और शिक्षा में निवेश करके वहां लोगों की जिंदगी की गुणवत्ता बेहतर हुई। ये दिखाता है कि क्षमताओं का विस्तार कितना शक्तिशाली हो सकता है।
बिल्कुल। और जाते जाते हम सब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर हम सच में अपने मोहल्ले, अपने शहर या अपने देश की प्रगति को सिर्फ रुपयों पैसों से नहीं बल्कि लोगों की सेहत, उनकी खुशी, उनकी आज़ादी और प्रकृति की सेहत से नापने लगें, तो हमारी प्राथमिकताएं कैसे बदलेंगी? क्या फर्क आएगा हमारे फैसलों में, हमारी नीतियों में? मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।